एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो एक ऐसे विषय को छूती है जिसे कई लोग शायद थोड़ा मुश्किल या शायद पुराना भी मानते हैं, धर्मशास्त्र या थियोलॉजी।
हाँ, थियोलॉजी।
किताब का नाम है थियोलॉजी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और लेखक हैं डेविड एफ फोर्ड।
बिल्कुल, धर्मशास्त्र सुनते ही दिमाग में आता है शायद कोई बहुत अकेडमिक सी चीज, या फिर पुरानी धूल भरी किताबें जिनकी आज कोई रेलेवेंस नहीं। ऐसा ही लगता है ना अक्सर?
हाँ हाँ बिल्कुल, कई लोगों को लगता है कि ये तो बस पंडितों या पादरियों के मतलब की चीज़ है या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के लिए।
सही।
लेकिन डेविड फोर्ड जो हैं वो इस सोच को बिल्कुल पलट देते हैं। उनका कहना है कि धर्मशास्त्र का मतलब सिर्फ सिद्धांतों का ढेर लगाना नहीं है, बल्कि ये एक एक तरह की कला है, एक समझ है कि ईश्वर, दुनिया और हमारे रिश्तों को समझदारी, करुणा और उम्मीद के साथ कैसे जिया जाए। ये एक जिंदा समझ है, कह सकती है।
अच्छा, जिंदा समझ। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मिशन यही समझना है कि फोर्ड की नज़र में धर्मशास्त्र आखिर है क्या, इसका असली रोल, इसका गोल क्या है, और क्या आज की इस तेज़ रफ्तार, काफ़ी उलझी हुई और कई बार सेक्युलर कही जाने वाली दुनिया में इसका सच में कोई महत्व है?
बिल्कुल, फोर्ड इसे कोई बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बहस नहीं मानते।
नहीं।
नहीं, वो इसे जिंदगी के जो बड़े सवाल है ना, जैसे प्यार, दुख, जीने का मतलब क्या है, इन पर एक खुली, लगातार चलने वाली बातचीत की तरह देखते हैं।
दिलचस्प। तो इस बातचीत में उतरने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान ले, डेविड एफ फोर्ड।
हाँ, जरूरी है, क्योंकि वो कोई आम एकेडमिक नहीं है। आज के ईसाई धर्मशास्त्र की दुनिया में उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है और वो काफी प्रभावशाली भी माने जाते हैं।
जी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कई साल तक रेजियस प्रोफेसर ऑफ डिविनिटी रहे। ये धर्मशास्त्र की दुनिया में सबसे बड़े पदों में से एक माना जाता है।
हाँ
लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो एक ले थियोलॉजियन है, यानी वो चर्च के किसी आधिकारिक पद पर नहीं है।
अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि उनका नज़रिया सिर्फ किताबी या पादरियों वाला नहीं है। वो आम लोगों की ज़िंदगी उनके सवालों से ज़्यादा जुड़े हुए लगते हैं। उन्हें एक ज़मीनी समझ है, कह सकते हैं।
हाँ, और उनकी जो एक्सपर्टीज है वो सिर्फ ईसाई धर्म तक ही सीमित नहीं है, वो पब्लिक थियोलॉजी पर काम करती हैं। मतलब धर्म का समाज, राजनीति, कल्चर में क्या रोल है, और साथ ही इंटरफेथ रिलेशंस, यानी अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत, खासकर यहूदी ईसाई डायलॉग, इसमें उनकी गहरी दिलचस्पी है। उन्होंने कैम्ब्रिज इंटरफेथ प्रोग्राम शुरू भी किया था, तो वो सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं बल्कि असली जिंदगी के रिश्तों पर फोकस करती हैं।
हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है। देखिए, वो अपनी ईसाई परंपरा को तो गहराई से समझते ही हैं, लेकिन साथ ही दुनिया के दूसरे विचारों, दूसरे धर्मों के साथ बातचीत के लिए भी एकदम खुले हैं।
सही,
और उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद यह है कि वो मुश्किल से मुश्किल आइडियाज़ को भी ऐसी भाषा में समझा देते हैं जो सीधी लगे, सरल लगे और ज़िंदगी से जुड़ी भी लगे। उनके लिए धर्मशास्त्र कोई म्यूज़ियम में रखी चीज़ नहीं है,
नहीं बिल्कुल नहीं।
बल्कि एक धड़कती भी सच्चाई है, और उसका मकसद आज हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है।
बिल्कुल सही। तो अब आते हैं किताब पर। ये वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज की किताब है, छोटी है लेकिन है बड़े कमाल की।
हाँ, नाम से लगता है छोटी होगी।
है छोटी, पर ये ईसाई धर्मशास्त्र की दुनिया का एक जबरदस्त नक्शा पेश करती है। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ धर्मशास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है।
सही कहा, ये तो हर उस इंसान के लिए है जो थोड़ा भी उत्सुक है, जानना चाहता है, नज़र से देखता हो, पर ईमानदारी से समझना चाहे कि भई ये धर्मशास्त्र चीज क्या है, इसका असल मकसद क्या है।
बिल्कुल, फोर्ड का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि धर्मशास्त्र को उस पुरानी छवि से बाहर निकाला जाए कि ये सिर्फ कट्टर नियम है या आज के जमाने से कटी हुई बातें हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि धर्मशास्त्र असल में एक बहुत जरूरी काम है, एक हुनर है जो हमें आज की इस कॉम्प्लेक्स लाइफ को समझदारी और रहम के साथ जीने में मदद कर सकता है।
हाँ, किताब की शुरुआत ही कुछ ऐसी है जैसे वो आपको एक बड़ी पुरानी बातचीत के कमरे में बुला रहे हों जो सदियों से चल रही है।
एग्जैक्टली, और फिर वो हमें ईसाई सोच के कुछ बेसिक पिलर्स तक ले जाती हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, त्रिमूर्ति,
हाँ, त्रिमूर्ति।
ईसा मसीह कौन थे, उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा का रोल क्या है, लेकिन ये सब किसी क्लासरूम लेक्चर जैसा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। फोर्ड दिखाते हैं कि ये मान्यताएं सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये दुनिया को देखने का, उसमें जीने का एक खास तरीका देती हैं। मतलब चीजों का मकसद क्या है, रिश्तों की वैल्यू क्या है, ये सब।
और फिर ये यात्रा बाहर की तरफ मुड़ती है कि ये जो बेसिक आइडियाज हैं, ये हमारी जिंदगी में कैसे उतरते हैं,
प्रैक्टिकल कैसे होते
हैं। हाँ, जैसे पवित्र ग्रंथों को कैसे पढ़ें कि वो सिर्फ शब्द न रहें, रास्ता दिखाएं दूसरों से, चाहे वो हमारे जैसे हों या बिल्कुल अलग, रिश्ते कैसे बनाएं, दुनिया की जो बड़ी समस्याएं हैं, गरीबी, अन्याय, उनसे कैसे जुड़ा जाए। और किताब का अंत भी बहुत खास है, वो असल लोगों यानी धर्मशास्त्रियों की कहानियों से दिखाती हैं कि ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये जिया हुआ सच है।
तो कुल मिलाकर फोर्ड का संदेश यही लगता है कि धर्मशास्त्र अगर सही तरह से समझा और जिया जाए तो एक ऐसी समझ या विजडम पैदा करता है जो दुनिया के लिए एक वरदान, एक ब्लेसिंग बन सकती है।
हाँ,
इसका लक्ष्य सिर्फ अपना मोक्ष नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना है, और यही बात इसे आज के टाइम में इतनी जरूरी और उम्मीद भरी बना देती है।
बिल्कुल। तो चलिए अब किताब के कुछ हिस्सों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर जाने के बजाय हम कुछ बड़े थीम्स को देखते हैं कि फोर्ड धर्मशास्त्र के रोल और गोल को कैसे समझाती हैं।
ठीक है, तो पहला सवाल तो यही उठता है, आखिर ये धर्मशास्त्र है क्या भला?
अध्याय एक।
हाँ, फोर्ड यहाँ एंसेल्म की वो क्लासिक परिभाषा लाती हैं, फाइडेस क्वायरेंस इंटेलेक्टम,
समझ की तलाश में विश्वास।
हाँ, लेकिन वो इसे फौरन एलार्जिट करती हैं, मतलब फैलाती हैं, ये सिर्फ दिमागी समझ नहीं है। वो कहती हैं, सोचिए आप एक नए, बड़े और खूबसूरत लैंडस्केप में रहने आए हैं।
आपको वहाँ रहना सीखना होगा, रास्ते जानने होंगे, लोगों से मिलना होगा, वहाँ के तौर तरीके समझने होंगे। धर्मशास्त्र कुछ वैसा ही है, ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है।
तो क्या है फिर?
ये ईश्वर, दुनिया और खुद के साथ सही ढंग से जीने का हुनर सीखना है। इसमें प्रार्थना, पूजा, ग्रंथों को समझना, नैतिक रूप से सोचना सब शामिल है। तो इसका रोल सिर्फ जानना नहीं बल्कि जीना सिखाना है।
अच्छा, जीना सिखाना। फिर सवाल आता है ईश्वर का, अध्याय 2-4। ईसाई धर्म में ईश्वर को त्रिमूर्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में समझा जाता है। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना?
हाँ, अक्सर लगता है कि ये कोई गणित की पहेली है, 1+1+1=1 कैसे?
हाँ, वही।
लेकिन फोर्ड कहती है, इसे गणित की तरह मत देखो, ये इस बारे में एक गहरा बयान है कि असलियत, रियलिटी कैसी है।
रियलिटी कैसी है?
मतलब ये कि ईश्वर अकेला कहीं दूर बैठा कोई रूलर नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही एक रिश्ता है, प्रेम का एक समुदाय है, और यही प्रेम पूरी सृष्टि का स्रोत है। तो अगर ईश्वर खुद ही संबंध परक है, रिलेशन में है, तो हमारे जीवन का, हमारे समाज का लक्ष्य भी आपसी जुड़ाव और प्रेम होना चाहिए।
ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है।
हाँ, और इसी समझ से जुड़ा है दुख और बुराई का वो मुश्किल सवाल। फोर्ड कोई आसान जवाब नहीं देती।
क्या कहती है फिर?
वो इशारा करती है ईसा मसीह के क्रूज की तरफ। कहती है, देखो, जब इंसान दुख झेल रहा था तो ईश्वर दूर नहीं खड़ा था, वो यीशु के रूप में खुद उस दुख के बीच उतरा। तो धर्मशास्त्र का काम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना नहीं है,
बल्कि
दुख के समय में भी ईश्वर की मौजूदगी और उसकी करुणा को खोजना है।
और पवित्र आत्मा का क्या रोल है इसमें?
पवित्र आत्मा वो ईश्वर की सक्रिय शक्ति है जो दुनिया में लोगों के दिलों में काम कर रही है। वो हमें प्यार, शांति, धीरज जैसे गुण देती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। तो ईसाई जीवन सिर्फ कुछ बातें मान लेना नहीं है।
अच्छा।
बल्कि इस आत्मा की शक्ति से बदलना है। यानी धर्मशास्त्र का एक बड़ा लक्ष्य आंतरिक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाना भी है।
अब आते हैं थोड़े प्रैक्टिकल पहलुओं पर, अध्याय 5-7। जैसे पवित्र ग्रंथों, मान लीजिए बाइबल को कैसे पढ़ा जाए?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। फोर्ड कहती है, दो एक्सट्रीम से बचना है।
अच्छा।
एक तो ये कि आंख बंद करके हर शब्द को सच मान लो बिना सोचे समझे,
और दूसरा?
दूसरा ये कि इसे बेकार पुरानी किताब कहकर फेंक दो। वो कहती है, इसे पढ़ना एक कला है, एक क्राफ्ट है, समझना होगा कि ये कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया।
कॉन्टेक्स्ट जरूरी है।
बिल्कुल। और इसे अकेले में नहीं बल्कि समुदाय के साथ, प्रार्थना के साथ पढ़ना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाना नहीं बल्कि ईश्वर से मिलना और बदलना है।
अच्छा।
और दूसरों के साथ रिश्तों के बारे में क्या?
अध्याय 6 में फोर्ड इस पर बहुत जोर देती हैं कि धर्मशास्त्र सिर्फ पर्सनल चीज नहीं, ये सोशल है। ये सिखाता है कि पड़ोसियों से, अजनबियों से, यहां तक कि दुश्मनों से कैसे पेश आए। माफी, सुलह, न्याय, ये सब धर्मशास्त्र के जरूरी हिस्से हैं। और ये सिर्फ अपने धर्म के लोगों तक सीमित नहीं है। फोर्ड दूसरे धर्मों, खासकर यहूदी धर्म के साथ सम्मानजनक बातचीत पर बहुत बल देती हैं। हमारे जैसे विविधता भरे देश के लिए ये कितनी जरूरी बात है।
हाँ, ये तो बहुत ही प्रासंगिक है।
बिल्कुल। और आखिर में अध्याय 7, फोर्ड कहती हैं कि धर्मशास्त्र को दुनिया के जो बड़े मसले हैं, राजनीति, गरीबी, पर्यावरण, उनसे जुड़ना ही चाहिए। इसे वो पब्लिक थियोलॉजी कहती हैं।
पब्लिक थियोलॉजी?
हाँ, मतलब विश्वास सिर्फ पूजा घर या अपने मन तक सीमित नहीं रह सकता। उसे दुनिया की समस्याओं का सामना करना होगा और बेहतरी के लिए अपने आइडियाज, अपने रिसोर्सेज पेश करने होंगे।
तो लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है सबका भला या समग्र उत्कर्ष। अंग्रेजी में वो फ्लोरिशिंग शब्द इस्तेमाल करती हैं, हिब्रू में शालोम। ये सिर्फ आत्मा की बात नहीं, बल्कि शारीरिक, सामाजिक और पर्यावरण हर तरह की भलाई है।
वाह। और अंत में अध्याय 8, वो कुछ धर्मशास्त्रियों की मिसालें भी देते हैं, ऑगस्टीन, एक्विनास, लूथर और डिट्रिच बोनहोफर, जिन्होंने नाजी जर्मनी में आवाज उठाई थी।
हाँ, ये दिखाने के लिए कि धर्मशास्त्र कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय में जी गई एक जिंदा परंपरा है।
सही है। तो इन सब बातों से गुजरने के बाद अगर हम देखें तो फोर्ड की सोच में कुछ बड़े धागे या कहिए मुख्य संदेश साफ उभर कर आते हैं ना?
हाँ बिल्कुल। पहला और शायद सबसे जरूरी तो यही है कि धर्मशास्त्र सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीने की कला है।
थियोलॉजी एज लिव्ड विजडम,
जीने की कला। हाँ, ये दिमागी कसरत से ज्यादा एक हुनर है, एक क्राफ्ट है, जिसका मकसद हमें और हमारे समाज को बदलना है। फोर्ड के लिए अच्छी थियोलॉजी की पहचान उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बल्कि ये है कि वो कितना प्यार, शांति और न्याय पैदा करती है। इसका असली रोल जिंदगी को बेहतर बनाना है।
दूसरी बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो है रिश्तों पर आधारित हकीकत और त्रिमूर्ति ईश्वर, रिलेशनल रियलिटी, ट्रिनिटेरियन गॉड। फोर्ड का ईश्वर को त्रिमूर्ति यानी एक प्रेममय समुदाय के रूप में देखना, यह बताता है कि असलियत का, रियलिटी का ताना बाना ही रिश्तों से बुना है। ईश्वर अकेला नहीं, संबंध परक है। ये आज के इंडिविजुअलिज्म को सीधी चुनौती है। और सोचिए, भारत में जहां रिश्तों और समुदाय को इतनी अहमियत दी जाती है, ये विचार कितना नेचुरल लगता है कि ईश्वर भी रिश्तों का ही रूप है।
बिल्कुल सही कहा। तीसरा, ईसा मसीह की कहानी की केंद्रीयता, सेंट्रैलिटी ऑफ जीसस स्टोरी। फोर्ड के लिए यीशु का जीवन, उनकी मौत और उनका जी उठना, ये वो लेंस है, वो खिड़की है जिससे ईश्वर और दुनिया को सबसे साफ देखा जा सकता है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी उम्मीद और प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। ये ईश्वर के प्रेम और बुराई पर जीत का प्रतीक है।
चौथा, धर्मशास्त्र अकेले का नहीं, समुदाय और बातचीत का काम है। थियोलॉजी इज कम्युनल एंड कॉन्वर्सेशनल। ये अकेले कमरे में बैठकर सोचने की चीज नहीं है।
नहीं,
इसे समुदाय में अपनी परंपरा के साथ और दूसरों के साथ, चाहे वो दूसरे धर्मों के हों या अलग विचार रखते हों, लगातार बातचीत में किया जाता है। फोर्ड का इंटरफेथ डायलॉग पर जो जोर है वो यही दिखाता है।
हाँ।
और हमारे जैसे देश में जहां इतने सारे धर्म और विचार साथ रहते हैं, बातचीत का ये तरीका कितना जरूरी है। दूसरों को सुनना, समझना, सम्मान देना
बहुत जरूरी।
और पांचवा, पवित्र ग्रंथ जानकारी नहीं, बदलाव का जरिया है। स्क्रिप्चर एज ट्रांसफॉर्मेशन सोर्स। जब बाइबल या दूसरे पवित्र ग्रंथों को सही तरीके से, ध्यान से, समुदाय में प्रार्थना के साथ पढ़ा जाए तो वो सिर्फ नियमों की किताब या इतिहास का दस्तावेज नहीं रहते।
तो क्या बन जाते हैं? वो ईश्वर से मुलाकात का जरिया बन जाते हैं जो हमें अंदर से बदलते हैं और जीने का नया रास्ता दिखाते हैं। इनका रोल हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं, ट्रांसफॉर्म करना है।
ट्रांसफॉर्म करना। और छठा, जो शायद इन सबका निचोड़ है, सबकी भलाई या समग्र उत्कर्ष ही धर्मशास्त्र का लक्ष्य है। होलिस्टिक फ्लरिशिंग एज गोल।
हाँ, ये फ्लरिशिंग या शलोम,
फायर्ड बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ आत्मा की मुक्ति नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की भलाई है, इंसान, समाज, प्रकृति, सबका। तो धर्मशास्त्र का काम हमें दुनिया से भागना सिखाना नहीं,
नहीं बिल्कुल नहीं,
बल्कि यही इसी दुनिया को बेहतर बनाने में ईश्वर का हाथ बटाना है। ये इसे एक बहुत जरूरी और पॉजिटिव, उम्मीद भरा काम बना देता है।
एकदम। फोर्ड की किताब ऐसे विचारों से भरी है जो आपको रोककर सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ पंक्तियां या आइडियाज तो सीधे दिल में उतर जाते हैं।
हाँ, जैसे वो कहते हैं कि धर्मशास्त्र को ज्ञान के भंडार की तरह नहीं बल्कि समझ की तलाश में विश्वास के जरिए हासिल होने वाली एक गतिशील बुद्धिमत्ता की तरह देखना चाहिए।
गतिशील बुद्धिमत्ता?
हाँ, ये एक हुनर है जिसमें ईश्वर के साथ सही ढंग से जीने के लिए धर्मग्रंथ, परंपरा और पूजा के माहौल में रहना सीखना शामिल है। ये धर्मशास्त्र को एकदम एक्टिव और प्रैक्टिकल बना देता है, जैसे कोई कारीगरी सीख रहे हो। इसका रोल सिर्फ जानना नहीं, करना है।
या फिर ये वाला कि ईश्वर को त्रिमूर्ति के रूप में मानना कोई गणित की पहेली नहीं, बल्कि ये ऐलान है कि हकीकत अपने आप में संबंध परक है। ईश्वर खुद ही देने वाले प्रेम का एक समुदाय है, और यही बहता हुआ प्रेम सारी सृष्टि का स्रोत और मंजिल है। ये त्रिमूर्ति जैसे मुश्किल सिद्धांत को कितना कितना रिलेटेबल बना देता है, हमारी जिंदगी और रिश्तों से जोड़ देता है। अगर ईश्वर संबंध परक है तो हमारा लक्ष्य भी प्रेम भरे रिश्ते बनाना होना चाहिए।
बिल्कुल। और यीशु के क्रूस पर यह कहना कि वहां ईश्वर कोई दूर बैठा जज नहीं था जो सजा मांग रहा हो, बल्कि वो एक प्यार करने वाला पिता था जो हमारे दुख और मौत की गहराइयों में हमारे साथ उतरा। ये सुसमाचार को डर की कहानी नहीं बल्कि करुणा और उम्मीद की कहानी बनाता है। ये दुख के समय में एक अलग तरह की ताकत देता है।
हाँ, देता है। और ये कि धर्मशास्त्र को सार्वजनिक होना चाहिए, उसे सिर्फ चर्च या यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे हिम्मत और विनम्रता से हमारे समय के बड़े मुद्दों, न्याय, राजनीति, विज्ञान, दुनिया के दुख से जुड़ना चाहिए, ताकि सभी इंसानों की भलाई में योगदान दे सके। ये उस सोच को सीधी चुनौती है जो कहती है कि धर्म तो भाई पर्सनल मामला है। फोर्ड कहती है नहीं, इसका एक पब्लिक रोल है।
बिल्कुल। और अंत में ये बात कि धर्मशास्त्र की असली परीक्षा उसकी तार्किक मजबूती नहीं,
क्या है फिर,
बल्कि इंसान के जिंदगी को रोशन करने और बदलने की उसकी ताकत है। मतलब असली सवाल ये नहीं कि कोई बात कितनी स्मार्टली कही गई है, असली सवाल ये है कि क्या वो हमें बेहतर इंसान बनने और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। ज्ञान का लक्ष्य बुद्धिमत्ता और कर्म होना चाहिए।
बिल्कुल सही। और ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है, फोर्ड दिखाती हैं कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है।
कैसे?
जैसे बाइबल या पवित्र ग्रंथों को पढ़ने का तरीका बदल सकता है। सिर्फ नियम या कहानियां ढूंढने की बजाय हम पूछ सकते हैं, ये हिस्सा ईश्वर के बारे में क्या बताता है, ये मुझे आज कैसे जीने की दावत दे रहा है। इससे ग्रंथ एकदम जिंदा हो उठते हैं।
हाँ, या फिर निजी जिंदगी के दुख और मुश्किलों से गुजरने का नजरिया बदल सकता है। अगर ईश्वर दुख से भागा नहीं बल्कि उसमें शामिल हुआ जैसा फोर्ड कहती हैं, तो ये मुश्किल वक्त में एक अलग तरह का सहारा देता है। ये हमें दुख के अंदर भी उम्मीद और ईश्वर की मौजूदगी खोजने में मदद कर सकता है,
और आपसी रिश्तों और समुदाय को बेहतर बनाने के लिए भी ये सोच बहुत मददगार है। अगर ईश्वर खुद प्रेम का समुदाय है तो हमारे रिश्तों का आधार भी क्या होना चाहिए, खुद को देना, माफ करना, एक दूसरे का सहारा बनना।
सही।
ये सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं रह जाती बल्कि ईश्वर के स्वरूप का आईना बन जाता है।
सोचिए, हमारे परिवारों में, दोस्तों के बीच, समाज में ये सोच कितना फर्क ला सकती है।
ला सकती है।
और दूसरों से बातचीत का तरीका भी बदल सकता है ना। आज जहाँ हर कोई अपनी बात पे अड़ा रहता है, वहाँ फोर्ड का बातचीत पर जोर देना सिखाता है कि अलग विचारों को भी सम्मान से कैसे सुने।
हाँ।
चाहे अपनी ही परंपरा के अंदर मतभेद हो, या दूसरे धर्मों के लोगों से बात हो, या नास्तिकों से।
बिल्कुल।
ये असमत होते हुए भी जुड़े रहने की कला सिखाता है,
और ये हमें ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी उकसाता है। सामाजिक न्याय, पर्यावरण की चिंता, राजनीति में ईमानदारी, इन सब के लिए एक मजबूत धार्मिक आधार मिलता है।
अच्छा।
हाँ, हम खबरें पढ़ते हुए या पॉलिसीज देखते हुए पूछ सकते हैं, इससे किसका भला हो रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है, मैं दुनिया के लिए ईश्वर के प्रेम को कैसे दर्शा सकता हूँ। ये विश्वास को सिर्फ निजी दायरे से निकाल कर सामाजिक एक्शन में बदलता है।
कुल मिला के ये किताब हमें एक कह सकते हैं कि एक सतही या बचकाने विश्वास से आगे बढ़ने में मदद करती है। ये हमें मुश्किल सवालों से जूझने, अपनी परंपरा की गहराई को समझने और एक ऐसा विश्वास बनाने में मदद करती है जो दिमागी तौर पर मजबूत भी हो और दिल से लचीला भी।
हाँ, एक मैच्योर विश्वास।
हाँ, एक ऐसा विश्वास जो जिंदगी भर हमारे साथ बढ़ सके।
तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि धर्मशास्त्र कोई डरावनी या उबाऊ चीज नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक जरूरी और जिंदगी देने वाली गतिविधि है जो जीवन का अर्थ तलाश रहा है। फोर्ड ने इसे कुछ एक्सपर्ट्स के क्लब से निकालकर ज्ञान की एक खुली दिलचस्प और उम्मीद भरी खोज बना दिया है। उन्होंने धर्मशास्त्र के असल रोल यानी जीवन को दिशा देना और दुनिया को बेहतर बनाना को फिर से सेंटर में ला दिया है।
मेरे लिए सबसे अहम बात ये रही कि कैसे ईसाई विश्वास का मूल एक ऐसे ईश्वर में है जो खुद प्रेम का बहता हुआ सोता है, और ये विश्वास हमें दुनिया से कटने को नहीं बल्कि उसकी भलाई के लिए जुटने को कहता है।
हाँ,
और ये यात्रा अकेले की नहीं बल्कि सबके साथ बातचीत में तय होती है। और सबसे हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि त्रिमूर्ति जैसे जटिल सिद्धांत को फोर्ड ने कितने सरल, कितने संबंधपरक और प्रैक्टिकल तरीके से पेश किया है। वो सीधे हमारे रिश्तों और समुदाय से जुड़ता है, और ये दिखाता है कि धर्मशास्त्र का लक्ष्य सिर्फ अकादमिक पहेलियां सुलझाना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बताना है।
और मेरे लिए वो विचार सबसे ज्यादा घर कर गया कि धर्मशास्त्र का अंतिम मकसद सिर्फ किताबी समझ हासिल करना नहीं बल्कि जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान पाना है।
प्रैक्टिकल विजडम।
हाँ, प्रैक्टिकल विजडम। फोर्ड ने वाकई धर्मशास्त्र को अकादमिक दीवारों से बाहर निकालकर सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की उस मानवीय खोज का हिस्सा बना दिया है जिसमें हम सब शामिल हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने विश्वास या जीवन दर्शन का असली लक्ष्य क्या है, सिर्फ जानना या बेहतर जीना और दुनिया को बेहतर बनाना।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकोरो फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।